श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 57 सत्राजित की हत्या और मणि की वापसी। श्री बादरायणी ने कहा, यद्यपि जो कुछ घटित हुआ था भगवान गोविंद उससे पूर्णतया अवगत थे, फिर भी जब उन्होंने यह समाचार सुना कि पांडव तथा महारानी कुंती जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो वे कुल रीति पूरा करने के उद्देश्य से बलराम के साथ कुरुओं के राज्य में गए। दोनों ही विभु, भीष्म, कृप, विदुर, गांधारी तथा द्रोण से मिले। उन्हीं के समान दुख प्रकट करते हुए वे विलग उठे, हाय ये कितना कष्टप्रद है। इस अवसर का लाभ उठाकर हे राजन, अक्रूर तथा कृत वर्मा शतधन्वा के पास गए और उससे कहा, क्यों न स्यमंतक मणि को हथिया लिया जाए। सत्राजित ने वादा करके हमारी तिरस्कार पूर्वक अवहेलना करते हुए अपनी रत्न जैसी पुत्री हमें न देकर कृष्ण को दे दी, तो फिर सत्राजित अपने भाई के ही मार्ग का अनुगमन क्यों न करें। इस प्रकार उसका मन उनकी सलाह से प्रभावित हो गया और दुष्ट शतधन्वा ने लोभ में आकर सत्राजित को सोते हुए मार डाला। इस तरह पापी शतधन्वा ने अपनी आयु चीर्ण कर ली। जब सत्राजित के महल की स्त्रियां चीख रही थी और असहाय की तरह रो रही थी, तब शतधन्वा ने वह मणि ले लिया और वहां से चलता बना, जैसे कुछ पशुओं का वध करने के बाद कोई कसाई करता है। जब सत्यभामा ने अपने मृत पिता को देखा तो वे शोक में डूब गई। मेरे पिता, हाय में मारी गई, विलाप करती हुई वे मूर्छित होकर गिर गई। रानी सत्यभामा अपने पिता के शव को तेल के एक विशाल कुंड में रखकर हस्तिनापुर गई, जहां उन्होंने अपने पिता की हत्या के बारे में बहुत ही शोकातुर होकर कृष्ण को बतलाया, जो पहले से इस स्थिति को जान रहे थे। हे राजन, जब कृष्ण तथा बलराम ने यह समाचार सुना तो वे आह भर उठे, हाय यह तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्घटना विपत्ति है। इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए वे शोक करने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा आई। भगवान अपनी पत्नी तथा बड़े भाई के साथ अपनी राजधानी लौट आए। द्वारका आकर उन्होंने शतधन्वा को मारने और उससे मणि छीन लेने की तैयारी की। यह जानकर कि भगवान कृष्ण उसे मार डालने की तैयारी कर रहे हैं, शतधन्वा भयभीत हो उठा। वह अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा के पास गया और उससे सहायता मांगी, किंतु कृतवर्मा ने इस प्रकार उत्तर दिया। कृतवर्मा ने कहा, मैं भगवान कृष्ण तथा बलराम के विरुद्ध अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, भला उन्हें कष्ट देने वाला अपने सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। कंस तथा उसके सारे अनुयायियों ने उनसे शत्रुतावश अपनी संपत्ति तथा अपने प्राण गवाए और उनसे 17 बार युद्ध करने के बाद जरासंध के पास एक भी रथ नहीं बचा। अपनी याचना अस्वीकृत हो जाने पर शतधन्वा अक्रूर के पास गया और अपनी रक्षा के लिए उनसे अनुनय विनय की, किंतु अक्रूर ने उसी तरह उससे कहा, भला ऐसा कौन है جو ان دونوں کے بل کو جانتے ہوئے ان دونوں وبوؤں کا ویروت کرے گا۔ یہ تو پرمیشور ہی ہے جو اپنی لیلا کے روپ میں اس برہمانڈ کا سرجن پالن تتا سنہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وشو سترشتا گن بھی ان کے پریوجن کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ وہ ان کی مایا دوارا موہ گرست رہتے ہیں۔ سات ورشیہ ایک بالک کے روپ میں کرشن نے سموچا پروت اکھاڑ لیا اور آسانی سے اسے اوپر اٹھائے رکھا، جس طرح ایک بالک ککر متا اٹھا لیتا ہے۔ میں ان بھگوان کرشن کو نمسکار کرتا ہوں جن کا ہر کاریہ چکت کرنے والا ہے، وہ پرماتما ہیں، اسیم سروت تتا سمست جگت کے سر کیندر ہیں۔ جب اکرور نے بھی اس کی یاچنا اسویکار کر دی تو شت دھنوا نے اس امولیہ منی کو اکرور کے سنرکشن میں رکھ دیا اور ایک گھوڑے پر چڑھ کر بھاگ گیا، جو 100 یوجن 800 میل یاترا کر سکتا تھا۔ ہے راجن، کرشن تتھا بلرام کرشن کے رتھ پر سوار ہوئے، جس پر گروڑ چنہت دوجا پہرا رہا تھا اور جس میں اتیانت تیز گھوڑے جوتے تھے۔ وے اپنے شریش شواسور کے ہتھیارے کا پیچھا کرنے لگے۔ متھلا کے باہر ایک بگیچے میں وہ گھوڑا جس پر شت دھنوا سوار تھا گر گیا، بے بیت ہو کر اس نے گھوڑا وہیں چھوڑ دیا اور پیدل ہی بھاگنے لگا۔ کرشن کرودھ ہو کر اس کا پیچھا کر رہے تھے، چونکہ شت دھنوا پیدل ہی بھاگا تھا اس لیے بھگوان نے بھی پیدل ہی جاتے ہوئے اپنے تیز دھار والے چکر سے اس کا سر کاٹ لیا۔ تب بھگوان نے تیامنتک منی کے لیے شت دھنوا کے سبھی وستروں کو چھان مارا۔ منی نہ پا کر بھگوان کرشن اپنے بڑے بھائی کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہم نے ویرت ہی شت دھنوا کو مار ڈالا، اس کے پاس وہ منی نہیں ہے۔ اس پر بلرام نے اتر دیا، نسندیہ شت دھنوا نے منی کو کسی کے سنرکشن میں رکھ چھوڑا ہوگا، تم نگری میں لوٹ جاؤ اور اس ویکتی کو ڈھونڈو، میں ودیہ کے راجا سے بھیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے اتیانت پریہ ہیں۔ ہے راجن، یہ کہہ کر پریہ یدوونشی بلرام نے متھلا نگری میں پرویش کیا۔ جب متھلا کے راجا نے بلرام کو سمیپ آتے دیکھا تو وہ ترنت اپنے آسن سے اٹھ کھڑا ہوا۔ راجا نے بڑے پریم سے وشد پوجا کر کے پرم آرادھیا پربھو کا سمان شاستری آدیشوں کے انوسار کیا۔ سرو شکتی مان بھگوان بلرام اپنے پریا بھکت جنک مہاراج سے سمانت ہو کر متھلا میں کئی ورشوں تک رکے رہے۔ اسی سمے دھرتراشٹر کے پتر دریودھن نے بلرام سے گدا یدھ کرنے کی کلا سیکھی۔ بھگوان کیشو دوارکا آئے اور انہوں نے شت دھنوا کی مرتیو تتھا تیامنتک منی کو کھوج پانے میں اپنی اسفلتا کا وورن دیا۔ وے اس طرح بولے جس سے ان کی پریتما ستیہ بھاما پرسن ہو سکے۔ تب بھگوان کرشن نے اپنے مرت سمبندی ستراجت کے لیے ویوید انتیم سنسکار سمپن کرائے۔ بھگوان پریوار کے شبھ چنتکوں کے ساتھ شو یاترا میں سملت ہوئے۔ جب اکرور تتھا کرت ورما نے جنہوں نے شروع میں شت دھنوا کو اپرادھ کرنے کے لیے اکسایا تھا یہ سنا کہ وہ مارا گیا ہے تو وہ بھے کے کارن دوارکا سے بھاگ گئے اور انہوں نے انیتر جا کر شرن لی۔ اکرور کی انوپستھتی میں دوارکا میں تمام اپشکن ہونے لگے और वहाँ के निवासी शारीरिक तथा मानसिक कष्टों के अतिरिक्त दैविक तथा भौतिक उत्पातों से भी त्रस्त रहने लगे। कुछ लोगों ने प्रस्तावित तो किया कि ये विपत्तियां अक्रूर की अनुपस्थिति के कारण हैं, किंतु वे भगवान की उन महिमाओं को भूल गए थे जिनका वर्णन वे प्रायः स्वयं किया करते थे। निसंदेह उस स्थान में विपत्तियां कैसे आ सकती हैं जहां समस्त मुनियों के आश्रय रूप भगवान निवास करते हों। बड़े बूढ़ों ने कहा, पूर्व काल में जब इंद्र ने काशी बनारस पर वर्षा करनी बंद कर दी तो उस शहर के राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी श्वफल्क को दे दी, जो उस समय उससे मिलने आया था। तब तुरंत ही काशी राज्य में वर्षा हुई। जहां भी इंद्र के ही समान शक्तिशाली उसका बेटा अक्रूर ठहरता है वहीं वह पर्याप्त वर्षा करेगा। निसंदेह वह स्थान समस्त कष्टों तथा असामयिक मृत्युओं से रहित हो जाएगा। वृद्ध जनों से ये वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने यह जानते हुए कि अब शकुनों का एकमात्र कारण अक्रूर की अनुपस्थिति नहीं थी, उन्हें द्वारका वापस बुलवाया और उनसे बोले, भगवान कृष्ण ने अक्रूर का स्वागत सत्कार किया, उनका गोपनीय तौर पर अभिवादन किया और उनसे मधुर शब्द कहे। तब हर बात जानने वाले होने के कारण भगवान, जो कि अक्रूर के हृदय से बली भांति अवगत थे, हंसे और उनको संबोधित किया, हे दानपति, अवश्य ही वह ऐश्वर्यशाली स्यामंतक मणि चत धनवा तुम्हारे संरक्षण में छोड़ गया था और अब भी तुम्हारे पास है। असल में हम इसे लगातार जानते रहे हैं। क्योंकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी पुत्री के पुत्र उसके उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें ही श्राद्ध के निमित्त तर्पण तथा पिंड दान करना चाहिए, अपने नाना का ऋण चुकता करना चाहिए और शेष धन अपने लिए रखना चाहिए। तो भी हे विश्वास पात्र अक्रूर, यह मणि तुम्हारे संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई इसे सुरक्षित नहीं रख सकता। बस एक बार यह मणि दिखला दो, क्योंकि मैंने इसके विषय में अपने अग्रज से जो कुछ कहा है वे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। इस तरह हे परम भाग्यशाली, तुम मेरे संबंधियों को शांत कर सकोगे। हर व्यक्ति जानता है कि मणि तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम इस समय लगातार सोने की बनी वेदिकाओं में यज्ञ संपन्न कर रहे हो। इस तरह भगवान कृष्ण के समन्वयात्मक शब्दों से लज्जित होकर श्वफल्क पुत्र उस मणि को वहां से निकाल कर ले आया जहां उसने अपने वस्त्रों में छिपा रखा था और उसे भगवान को दे दिया। यह चमकीला मणि सूर्य की तरह चमक रहा था। अपने संबंधियों को स्यामंतक मणि दिखला चुकने के बाद सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने विरुद्ध लगे झूठे आक्षेपों को दूर करते हुए उसे अक्रूर को लौटा दिया। यह आख्यान जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णनों से युक्त है, पाप पूर्ण फलों को दूर करता है और समस्त मंगल प्रदान करता है। जो कोई भी इसे पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है वह अपनी अपकीर्ति तथा पापों को भगा सकेगा और शांति प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत सत्राजित की हत्या और मणि की वापसी नामक 57वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।